सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।
ओम शांति। प्यारे बाबा की शिव जयंती की मुरली हम सभी ने सुनी। जैसे हम कहते हैं कि सब पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान, तो ऐसे ही बाबा ने शिव जयंती की मुरली में भी हम बच्चों को बहुत सारी धारणा की बातें सुनाई, जिनमें से कुछ मुख्य बातों के ऊपर अभी हम चिंतन करेंगे। सबसे पहले तो बाबा ने पवित्रता की बहुत अच्छी परिभाषा बताई, पहले भी बाबा बताते रहे हैं, लेकिन इस मुरली में बाबा ने विशेष अंडरलाइन करवाया कि केवल ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता। जैसे बाबा कहते हैं सबके लिए शुभ सोचना, चाहे कोई आपका मित्र है, आपकी महिमा करता है या आप दूसरा रूप रखता है, लेकिन सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखना ये पवित्रता है। इसी तरह से हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना ये पवित्रता है। संबंध संपर्क में मन वचन कर्म में सदा गुणवान बनकर के रहना ये पवित्रता है। फिर बाबा ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि बाप समान स्थिति क्या है और बाबा बच्चों का कैसा स्वरूप देखना चाहते हैं। तो बाबा ने ऐसे तो ये कहा कि बाबा संपन्न है और बच्चों को भी संपन्न बनना है, लेकिन संपन्नता की परिभाषा बाबा ने बहुत अच्छी खोल करके सुनाई। बाबा ने कहा जैसे बाप समान संपन्न बनना है, बाप जैसे बोल और कर्म आप बच्चों के होने चाहिए। साथ साथ बाबा ने ये भी अंडरलाइन करवाया कि चेहरा हमेशा हर्षित हो, उलझा हुआ उदास दिल शिकस्त या व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला अगर चेहरा है तो इसका मतलब बाप समान स्थिति नहीं है। और ऐसा चेहरा बनता क्यों है? बनता तब है जब माया आती है। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा ने ब्राह्मण जीवन के प्रारंभ में ही बता दिया कि माया का काम है आना और आप बच्चों का काम है माया को भगाना। लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे माया को बिठा लेते हैं, जैसे किसी को बैठने के लिए कुर्सी डालो, थोड़ी उसकी खातिरी करो तो वो बैठ जाता है। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जैसे किसी को बहुत खातिरी करो, कुर्सी डालो तो वो बैठ जाता है, तो माया की भी तीन कुर्सियां बाबा ने बताई। पहली कुर्सी है अभी कौन संपूर्ण बना है, दूसरी कुर्सी है अभी तो बहुत समय पड़ा है, और तीसरी कुर्सी है करना तो है ही कर लेंगे। तो जब ये तीन कुर्सियां हम डाल देते हैं तो वो जम के बैठ जाती है। तो बाबा ने कहा दूसरा माया के आने का कारण है बच्चे गेगे करते हैं, और गेगे क्यों करते हैं, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन है। तो जिसमें आलस्य होगा अलबेलापन होगा वो हर काम के लिए क्या बोलेगा, शाम को बोलेगा सुबह कर लूंगा, सुबह बोलेगा शाम को कर लूंगा, फिर बोलेगा कल कर लूंगा, तो उसके हर शब्द के अंदर गय आएगा। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था गय 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 तो छोटे बच्चे करते हैं। तो जब ब्राह्मण भी छोटे बच्चे बन जाते हैं तो माया छोटे बच्चों को देख करके वार कर लेती है, समझती है कि अभी छोटा है मेरे वार के नीचे आ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में अभी समय, जैसे बाबा इशारा देते हैं कितना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, कितना तीव्र गति से नजदीक आ रहा है, तो ऐसे समय में आलस्य और अलबेलापन नहीं लेकिन एवर रेडी स्टेज चाहिए। और एवर रेडी स्टेज की निशानी है बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, क्लीन चाहिए, साफ और बाबा के साथ जुड़ी हुई चाहिए। तो बाबा ने कहा समय ऐसा आ रहा है, परिस्थितियां, वातावरण, ये सब ऐसा उलझन वाला आ रहा है, ऐसे समय में अगर बुद्धि क्लीन नहीं होगी तो बाबा की जो शक्तियां हैं या बाबा से हमको कैचिंग पावर और टचिंग पावर हमारे अंदर नहीं होगी तो समय अनुसार हम बाबा जो इशारा देना चाहते हैं उसको कैच नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले जब सुनामी आई थी तो उसकी एक बात सुनाते हैं कि एक भीके भाई था विदेश का और कुछ और भी लोग थे उनके साथ, तो उन्होंने उसी दिन प्रोग्राम बनाया था कि हम समुद्र के अंदर जड़ी बूटियों का अध्ययन करने चलेंगे। तो पूरा प्रोग्राम था कि सुबह ऐसे ऐसे 6 बजे सब सामान लेके नाव भी तैयार थी और चलेंगे, लेकिन एक बीके भाई था, बाकी उसके फ्रेंड्स थे। तो उस दिन जब उसने अमृत वेला किया तो जैसे अमृत वेला उसको बहुत जोर से प्रेरणा आई कि आज मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना वो नहीं मालूम है, लेकिन प्रेरणा आई कि आज मुझे नहीं जाना है। तो जब उसके साथी आए पूरी तैयारी करके चलो भाई, तो उसने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जा सकूंगा और आप लोग जो भी करके आना हो वो करके आ जाओ। तो साथियों ने पूछा, उसने बोला नहीं मेरे को कोई काम है। तो ऐसे कह के उसने अपना प्रोग्राम मिस कर दिया, साथी चले गए और जैसे ही वो लोग गए उसी समय प्रकृति का ये प्रकोप शुरू हो गया। तो बुद्धि की लाइन जिसकी क्लियर होगी तो वो बाबा की बात को कैच करेगा, मौके पर उसको मदद मिलेगी। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो तो बेचारा उस परिस्थिति का शिकार हो जाएगा। इसलिए ये भी बाबा ने कहा समय प्रमाण, समय ऐसा है, समय बड़ा नाजुक है, आवश्यकता है कि हमारी बुद्धि इतनी बाबा के साथ जुड़ी हुई हो। और बाबा ने कहा कि यही समय है जिसमें आपको अपनी प्लेन बुद्धि के द्वारा शांति की शक्ति को जमा करना है। शांति की शक्ति कहिए या श्रेष्ठ कर्मों का खाता कहिए, बाबा ने कहा इसका बैंक अभी खुला है, बाद में तो ये बैंक बंद हो जाएगा। तो एक सेकंड के लिए भी अशरीरी बनने का अभ्यास करो, बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं शरीरी कैसे बनूं, लेकिन शरीरी बनने के लिए बहुत लंबा चौड़ा समय थोड़े चाहिए। बाबा ने तो कहा एक सेकंड के समय में भी आप ये खाता जमा कर सकते हो। संकल्प किया और शांति की शक्ति अनुभव में आई। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने इस शांति की शक्ति से कितने चमत्कारी कार्य किए। जब बाबा को मालूम पड़ता था कि किसी बच्चे की तबीयत का कुछ है या किसी को कर्म बंधन है या किसी को वैसे कोई मानसिक समस्या है, तो बाबा उस बच्चे को बहुत जैसे सुबह सुबह सकाश देते थे और उसको मदद मिलती थी। तो बाबा ने कहा ये शांति की शक्ति बड़ी चमत्कारिक शक्ति है और इसका अभ्यास समय प्रमाण बहुत बहुत होना चाहिए। और हम देखते भी हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी को बहुत देर तक ज्ञान सुनाया, वो बहुत बहस करता है, बहुत प्रश्न पूछता है, संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन केवल आधा मिनट एक मिनट उसको अगर शांति के वाइब्रेशन देते हैं तो क्या होता है, वो चुप हो जाता है, उसको जैसे सांत्वना मिल जाती है। भले उसको ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन उसको अनुभूति ऐसी हो जाती है कि यहाँ सचमुच ये जो भी कह रही है ना वो सत्य है, और उसका जो बहस वाला रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बहुत देर की वाणी और कुछ समय की शांति की शक्ति अगर दोनों को एक पलड़े में रखें तो शांति का पलड़ा भारी होता है। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जैसे बाबा कहते हैं आप बच्चों को सतयुगी दुनिया बनानी है तो उसमें मनुष्य आत्माओं को और प्रकृति को दोनों को बदलना है, तो चलो मनुष्यों को तो आप भाषण सुनाएंगे लेकिन प्रकृति को तो भाषण नहीं सुनाएंगे ना, पांच तत्वों तो भाषण नहीं सुनेंगे, तो पांच तत्वों का प्योरिफिकेशन कैसे होगा, उसके लिए भी शांति की शक्ति चाहिए, एकांत में बैठने का अभ्यास चाहिए, अपने भीतर की ओर जाने की लगन चाहिए, बार बार भीतर की ओर जाकर के अपने स्वरूप को देखने की लगन चाहिए। जैसे कोई बहुत छोटी चीज होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत स्थिर होके देखते हैं, बहुत एकाग्रता से देखते हैं, तो ऐसे ही आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, तो भीतर की आंख से हम उसको देखें, उसको रियलाइज करें, उसके स्वरूप में टिकें, और वो कितनी स्तो प्रधान बन गई, स्तो प्रधानता की कितनी परसेंटेज तक पहुंच गई, इस चीज को भी खुद ही रिजल्ट निकाले। तो ये तो हमारा पहला पाठ भी है और अंतिम पाठ भी है। अगर हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी सारे पाठ भी अपने आप पक्के हो जाते हैं। तो जैसे हम योग में बैठते हैं, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इतनी गहराई से आत्मा का अभ्यास करूं कि आत्मा के भीतर जो शांति की शक्ति है वो उस अनुभूति के द्वारा बाहर वातावरण में प्रकट हो। जब हम योग करें तो उस समय आत्माओं को महसूसता आए कि सचमुच इसमें से शांति के वाइब्रेशन जैसे बाहर निकल रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे साइंस वाले किसी भी चीज को प्रूव करके दिखाते हैं, वो कहते नहीं है करके दिखाते हैं, इसलिए लोग साइंस पर जल्दी विश्वास करते हैं और इसलिए साइंस से लोग बहुत प्रभावित। तो आपका ज्ञान भी तो बड़ा साइंटिफिक है ना, साइलेंस की शक्ति भी तो बड़ी चमत्कारी है ना, तो इस शक्ति का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उनको दिखे कि देखो ये आत्मा कितनी शांत है, इसके नेत्रों से भी शांति, इसकी वाणी से भी शांति, इसके कर्मों में भी इतनी शीतलता है। तो जैसे कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं ओरन की, दे दे अपना संग, तो उसको लगेगा ये सचमुच का संत है, भले रहता तो घर परिवार में है लेकिन संतों वाले सारे लक्षण इसमें हैं। तो जब ऐसे लक्षण प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे तब उनको लगेगा कि ये ज्ञान अवश्य ही कोई महान, कोई बहुत ऊंची शक्ति दे रही है। बाबा कहते हैं आपके द्वारा मेरी प्रत्यक्षता होगी। ऐसे तो शांति की शक्ति का अनुभव हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अमृत वेले इस शक्ति का बहुत अच्छे से भंडार भर लिया तो सारा दिन जैसे उस भंडार को हम यूज करते रहेंगे। बाबा ने पिछली मुरली में भी शांति की शक्ति की बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, बहुत अच्छा वर्णन किया था। इस मुरली में तो बाबा ने शांति की शक्ति का बैंक ही हम बच्चों के सामने रख दिया, और जैसे उसमें हमको अनिवार्य रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ जमा करना ही है। अभी शांति की शक्ति जमा करेंगे तो आधा कल्प शांत रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बाद के आधे कल्प में भी हमको उसका फल मिलता रहेगा। तो बाबा ने ये हमको होमवर्क दिया, और शिव जयंती के नाम से एक बहुत सुंदर गिफ्ट बाबा ने दी। याद है ना सभी को बाबा ने कौन सी गिफ्ट दी? बाबा ने कहा, हिम्मत का एक कदम आपका और हजार कदम बाबा के। इसका अनुभव तो सभी को है, जब हम एक कदम चलते हैं तो बाबा हजार क्या पदम कदमों से बच्चों की मदद करते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत करके गांव में गवर्नमेंट की एक योजना होती है, स्कीम होती है, जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है, जैसे मान लो कोई तालाब बनाना है तो गवर्नमेंट ये कहती है भाई 10% पैसा ग्राम पंचायत इकट्ठा करे और 90% पैसा सरकार देती है। तो जो पंचायतें 10% पैसा इकट्ठा कर लेती हैं उनको वो सरकार का 90% का फायदा मिल जाता है। लेकिन कई ऐसी पंचायतें होती हैं कहती हैं नहीं जी हम तो 10% भी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वो जो 90% पैसा होता है ना वो वापस चला जाता है, खो देते हैं वो। तो ऐसे ही बाबा ने कहा तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं हजार कदम बढ़ाऊंगा। अगर हमने एक कदम नहीं बढ़ाया तो हमने बाबा के कितने कदमों का लोस उठाया, 1000 कदमों का लोस हो गया, हमको ही तो लोस हुआ ना, हमको जो चीज मिलने वाली थी उस चीज का लोस हो गया। इसलिए एक कदम बढ़ाना है। एक कदम बढ़ाने का अर्थ क्या है? एक शुभ संकल्प तो करें, मन में शुभ संकल्प करना भी कदम बढ़ाना है, उसका भी बहुत बल मिलता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा बाबा जब मुरली चलाते हैं तो बाबा हाथ उठवाते हैं, जैसे पॉइंट आई बयाज के बाद माया से हार नहीं खाएंगे तो बाबा कहते अच्छा हाथ खड़े करो, आज के बाद माया से हार नहीं खाएंगे, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं और बाबा खुश हो जाते हैं। जबकि हाथ खड़ा करने वालों को भी पता है, क्या पता है, माया आएगी, फिर भी बाबा खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने इस सीजन की एक मुरली में कहा कि बाबा क्यों खुश होते हैं? इसलिए खुश होते हैं कि कम से कम इस घड़ी तो शुभ संकल्प किया, इस घड़ी तो सब बच्चों के मन में शुभ संकल्प है, इसलिए बाबा खुश हो जाते हैं। तो एक सेकंड भी हमने अच्छा संकल्प किया, उस एक सेकंड के संकल्प का फल ये मिला कि भगवान की हमें उस समय तो दुआ मिल गई। तो शुभ संकल्प का एक कदम भी हमें बहुत फल देता है। फिर उस शुभ संकल्प को वाणी में ले आए और कर्म में ले आए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो जैसे बाबा कहता है बच्चों के ऊपर बाबा कुर्बान हो जाता है। और ये देखने में आता है कि जब हम शुभ संकल्प को बार बार अंदर में इमर्ज करते हैं तो वो प्रैक्टिकल हो भी जाता है, शक्ति आ जाती है उसमें। इसलिए अंदर में शुभ संकल्प बार बार इमर्ज होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं, शुभ संकल्प जो किया है उसको सिद्ध होने का वरदान प्राप्त है, वो अवश्य सफल होगा। बाबा ने कहा है कि आप जब जब कोई संकल्प करते हो तो जैसे बाबा ऊपर बैठा तथास्तु कहता रहता है, जो पक्के भक्त होते हैं ना उनकी हर बात के लिए उनका इष्ट क्या बोलता है, पक्के भक्तों को उनका इष्ट बोलता है तथास्तु, तुमने जो सोचा हो जाएगा। भक्ति में भी कईयों को ऐसी अनुभूतियां हुई हैं सच्चे भक्तों को। तो बाबा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, और संगम युग को वरदान है कि हर ब्राह्मण को संकल्प सिद्धि मिलनी ही मिलनी है। तो आप जो भी सोचते हैं वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी आपको बाबा ने सिद्धि की लॉटरी दी है तो सोचना कैसा है। इसलिए तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण ने तपस्या की और तपस्या करके उल्टा वरदान मांगा तो वो भी सिद्ध हो गया। भाई वरदान उल्टा मांगा फिर भी सिद्ध क्यों हो गया, क्योंकि भगवान बंध गया ना, तुम जो मांगेगा मेरे को देना ही है। तो जैसे बाबा संगम युग में भी क्या कहता है, एक कदम बच्चों का हजार कदम बाबा का। फिर बाबा ने कहा इम्तिहान मत लेना कि देखें भगवान मदद करता है कि नहीं करता है, भगवान बंधा हुआ है, करना ही है बाबा को। और सचमुच हम देख रहे हैं बाबा कितनी सेवा हम बच्चों की करते हैं। फिर बाबा ने होमवर्क दिया, बाबा ने कहा अभी सीजन का एक मास बाकी है, मुरली चलाई थी तब तो एक मास बाकी था, अभी तो एक सप्ताह और कम हो गया। तो उसमें बाबा ने पांच बातों को अंडरलाइन करवाया। पहली बात बाबा ने कही कि बच्चों की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे, सबको होमवर्क याद है ना एक मास का, बाप की सूरत में बच्चों की सूरत दिखाई दे। इसका बाबा ने भावार्थ क्या है वो शुरू में स्पष्ट किया था, चेहरा उलझा हुआ ना हो, मुरझाया हुआ ना हो, व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला ना हो। और दूसरा बाबा ने कहा हर कदम श्रीमत पर उठाना है, और तीसरा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, और चौथा कर्म करते हुए भी योग का बैलेंस रखना है, और पांचवा स्वमान की सीट पर स्थित रहना है। तो एक मास अगर हम ये करेंगे, एक हफ्ता चला गया बाकी तीन हफ्ते अभी भी बाकी हैं। तो बाबा ने कहा था जैसे किसी कार्य को करती हैं तो वो हमारी नेचर बन जाती है, तो बाबा के दिए इस होमवर्क को हम करेंगे तो ये भी हमारी नेचर बन जाएगी। और सबसे ज्यादा ध्यान इस मुरली में बाबा ने दो बातों पे खिंचवाया है, तो पुरानी बातें लेकिन फिर बाबा ने अंडरलाइन करवाई। ब्राह्मण जीवन में सबसे विघ्नकारी बात कौन सी है, मैं। तो बाबा ने कहा जब मैं बोलते हो तो क्या याद आना चाहिए, मैं आत्मा। बाबा ने कहा जैसे मेरा कहते हो तो मेरा बाबा सबता याद आता, अभ्यास पड़ गया ना, बाबा ने मेरा बाबा का पाठ बहुत पक्का करवा दिया बच्चों को, इसलिए मेरा बाबा ये पाठ सबको पक्का हो गया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा अभी ये वाला पाठ भी पक्का करो, मैं तो हम सारा दिन में बहुत बार बोलते हैं। कहते हैं एक बार सर्वे किया गया था कि एक आदमी सारा दिन में कौन सा शब्द सबसे ज्यादा बोलता है, तो उस सर्वे का परिणाम ये आया कि हर व्यक्ति सारा दिन में मैं शब्द सबसे ज्यादा बोलता है, मैं ये करता हूं, मुझे ये पसंद है, मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये चीज खानी है, मैं बीमार हूं, मुझे रेस्ट करना है। कितने तरीके से हम, मैं के बिना तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो जैसे मैं बोलती हैं तो बोलेगा तो मुखी, लेकिन बोलने वाला कौन है उसका एहसास तो होता है ना। तो मुख से मैं कहने वाला मैं कौन हूं, ये मैं आत्मा हूं। किसी ने आवाज लगाई तुम हो, हमने कहा हाँ हम हैं, हाँ मैं हूं, तो ये किसने कहा? क्या स्वरूप में टिक करके बोला कि हाँ मैं हूं? किसी ने पूछा तुम ये काम करोगे? हाँ मैं करूंगा, करूंगी, तो ये किसने कहा मैं करूंगा या करूंगी? क्या उस समय आत्मा के स्वरूप की स्मृति आई कि हाँ ये लाइट कह रही है, ये बिंदु कह रही है कि हाँ मैं ये काम करूंगी? तो जब हम मैं कहते हैं तो मेरा वो लाइट रूप, ज्योति रूप, सूक्ष्म रूप, प्रकाश रूप, आत्मिक रूप, जैसे मेरी भीतर के नेत्र के सामने प्रकट हो जाए, ये मैं कहने वाली, मैं बिंदु आत्मा हूं, मैं ज्योति मैं कह रही हूं, ये मैं कहने वाला, ये इतना लंबा चौड़ा शरीर नहीं है, ये नहीं कहता मैं, क्योंकि ये तो मैं है ही नहीं, मैं तो मैं आत्मा हूं और मैं कह रही हूं। तो ये हमको बार बार अभ्यास में लाना है। सुनते हैं तो भी अभ्यास करना है, कौन सुन रहा है? भले वाणी कानों के द्वारा अंदर जा रही है, लेकिन सुन कौन रहा है? वाणी का मीनिंग कौन निकाल रहा है? वाणी को समझ कौन रहा है? वाणी को याद कौन रखेगा? वाणी को प्रैक्टिकल में कौन लाएगा? क्या कान दोबारा रिपीट करेंगे उसको? हमने अभी सुन लिया और थोड़ी देर में अगर हम इसको रिपीट करना चाहें तो रिपीट कौन करेगा? कान तो रिपीट नहीं करेंगे, वो सुनते ही नहीं है तो रिपीट कैसे करेंगे? सुनती आत्मा है, आत्मा रिपीट करेगी। अगर हमको कुछ याद नहीं आएगा तो हाथ कहाँ रखेंगे? माथे पे रखेंगे, हाँ एक ये वाली पॉइंट भी सुनी थी। कानों पे तो कोई याद नहीं रखता कि एक ये वाली पॉइंट भी यहां से अंदर गई थी। तो आत्मा ही याद करती है, आत्मा ही रिपीट करती है, आत्मा ही सुनती है। और यहां जब हम हाथ रखते हैं तो क्या होता है? संपूर्ण ध्यान चारों तरफ से हटके जैसे यहाँ केंद्रित हो जाता है, तो बात को याद करना सरल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। अगर हम ब्राह्मणों को ये हो जाए ना, सारी समस्याएं खत्म। और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है मेरापन। मेरापन भी तो आता है ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरी गुण, मेरा मेरी कला, मेरा स्वभाव, मेरी ड्यूटी, मेरा अधिकार, मेरे संबंधी, मेरे जिज्ञासु, बहुत कुछ में मेरा मेरा आता है। मैंने किया, मैं बहुत होशियार हूं, मुझे सब कुछ करना आता है। तो ये जब मेरापन आता है तो उस समय बाबा ने क्या बात याद कराई? करण करावन हार बाबा करवा रहा है। और वैसे भी जब किसी बात में हमको ये आता है कि मैंने ये किया, तो अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि अगर मैं बाबा का ना बना होता तो क्या मैं ये काम कर लेता? बस ये एक सवाल अपने से पूछें, अगर मैं भगवान का ना बनता, मुझे ये ज्ञान ना मिलता, तो क्या मैं ये काम करता जो मैंने आज किया है? नहीं कर सकते थे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने पहले अपना बनाया, फिर मुझे करना सिखाया। अपना बनाया उसका एहसान, फिर करना सिखाया उसका एहसान। बाबा के तो बहुत एहसान है हम पर, कितने एहसानों की गिनती करेंगे? तो इस बात को बार बार याद करना है, ये भी अभ्यास करना है। जैसे बच्चा अभ्यास करता है ना, लिख करके अभ्यास करता है, बोल करके अभ्यास करता है, तो हम भी कैसे अभ्यास कर सकते हैं? जैसे हमने कोई भी काम किया, बहुत बढ़िया किया, उदाहरण के लिए किसी ने खाना बनाया और उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, अपने किए हुए काम का एहसास तो व्यक्ति को होता है, तो वो एकांत में बैठ करके ये अभ्यास करे कि मेरे से ये बाबा ने बनवाया। भले किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुंह से किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि देखो मेरे से बाबा ने बनवाया, लेकिन खुद अभ्यास करे पक्का, ताकि भीतर में भी तो मैंपन ना आए ना, भीतर में भी तो बाबा की महिमा चालू रहे ना, कि देखो बाबा ने मेरे से ये काम इतना बढ़िया करवाया, वाह बाबा आपने मुझे कितना कलावान बना दिया, कितना गुणवान बना दिया, आपने तो मुझे, मैं क्या था और मेरा जीवन हीरे तुल्य बना दिया, वाह बाबा ये आपकी करामात है। आपके मार्गदर्शन से देखो मैंने ये काम करने की योग्यता हासिल की। वाह बाबा, सचमुच आप बच्चों की कितनी मदद करते हैं, जैसे आप उनके अंग संग रहते, जैसे आप उनकी छत्र छाया है। बाबा इस संगम युग में तो हमको आपका इतना अमूल्य साथ मिला है कि हम पल पल जैसे आपके अंग संग है। तो अंदर ही अंदर जब हम ऐसी महिमा पहले भीतर में करेंगे ना, तो जब बाहर बोलेंगे तो वैसी ही वाणी निकलेगी जैसी अंदर में अभ्यास की हुई होगी। इसलिए पहले अंदर प्रैक्टिस करें तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, मैपन से मुक्त हो जाएंगे। और मैपन से मुक्त हुए माना उसके सारे बाल बच्चों से भी मुक्त हो गए, उसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं ना। मैपन माना अहंकार, मैपन माना ईर्ष्या द्वेष, मैपन माना अपशब्द, मैपन माना जोश, पता नहीं कितने सारे उसका कुटुंब परिवार है, तो उस सारे से भी मुक्ति हो जाएगी। और उस कुटुंब परिवार से मुक्ति होगी तो फिर नम्रता वाला सारा परिवार हमारा साथी बन जाएगा। नम्रता, निरंकारिता, शांति, एकाग्रता, शुद्ध स्नेह, सहयोग, ये सारे गुण आ जाएंगे। तो बाबा ने बहुत धारणा भरी मुरली सुनाई। हम सब बच्चे बाबा से इतना खजाना लेते हैं तो उसको यूज भी करें, खजाने को काम में लगाएंगे तब वो खजाना हमें फायदा देगा। और बाबा तो ये भी कहते हैं कि जो यहाँ जितने ज्ञान रत्न धारण करेगा तो सतयुग में यही ज्ञान रत्न बदल करके वो वाले रत्न बन जाएंगे। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा की मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा ने एक भी मुरली मिस नहीं की। और केवल मिस करने की बात नहीं है, उन ज्ञान रत्नों को कितना वैल्यू दिया, बाबा के एक एक महावाक्य को कितना वैल्यू दिया। तो परिणाम क्या निकला, लक्ष्मी नारायण रिचेस्ट इन द कल्प, सारे कल्प में सबसे ज्यादा अमीर कौन है। तो हम बच्चे भी ज्ञान रत्नों को वैल्यू देंगे उतना ही वर्तमान में जीवन वैल्यूएबल बनेगा, और सतयुग में तो एवजा मिलेगा ही मिलेगा। ओम शांति।